Before we go through the session, so I'd like to first introduce Suman Ben, who will be taking us through the session. Suman Ben is the National Coordinator of the Education Wing and also coordinates all the services of this Gyan Sarovar complex where you are here today for this session. So Suman Ben is also a well-known speaker, and she's traveled both in India and abroad, where she's shared her thoughts in various forums and brought benefit to a lot of people. She's been with Brahmakumari since her childhood because her parents were in this, and as she grew up, she completed a graduation, and since the past 3 decades, she is continuously serving through the various services of Brahmakumari. So over to Suman Ben.
Om Shanti. So nice to see you all here at this time of the day, of the night, I can say. Yeah. And we are really privileged to have Sudesh Didi with us. And usually Didi is not in India at this time of the year. Just we finished our retreats of the foreigners, and Didi was supposed to go, but then we had meeting in Shantivan. So Didi stayed back, and you got this golden opportunity to meet Didi. Sudesh Didi. I would like to give a brief introduction of Didi. Sudesh Didi is a spiritual leader, teacher and yogi who has profoundly touched countless lives world over for more than 60 years. Based in Germany since 1996 as the European Director of Brahmakumaris, Sudesh Didi has travelled more than 100 countries, addressing national and international conferences and delivering workshops and seminars. She is an outstanding lecturer, teacher and broadcaster on human potential, meditation and creative abilities of the mind, and is renowned for the depth and breadth of her insights, as well as her ability to forge a heartfelt connection with each listener. Born in the 1940s in North India to a spiritual family and educated in ancient scriptures, her earliest ambition was to be of service to humanity. Her teaching abilities became apparent when unique circumstances made her headmistress of a girls' school at the age of 16. And also I would like to add here, Didi got double promoted every year. For 3-4 years, Didi? 3-4 years? Teen char saal aap double promote
hue? Every year two classes.
Every two classes she was double promoted. Yes. So such brilliant she was in a student life. So then she went on to attain her degree in Punjab University in Delhi. And Didi came in contact with the Brahmakumaris when she was 12 years of age. And along with her academic service studies, she also became a spiritual student, then the respected spiritual teacher and administrators with the Brahmakumaris. Didi helped to establish several centers, museums, teachers training programs, and toured widely within India. And in 1974, Didi left for the United Kingdom. Based in London, Didi worked tirelessly in establishing the activities of the organization outside of India. And now Didi is based in Germany and London as an European Director of Brahmakumaris. And today we are really honored and privileged to have Didi with us. And Didi will be sharing about the vision and mission of the Brahmakumaris. Didi? Brahmakumaris organization jab establish hua 1936-37 mein, jab Brahma Baba kya lakshya lekar ke is sanstha ki sthapna hui, what was the vision behind establishing this organization of Brahmakumaris?
Om Shanti. ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना, ये कहें ये ईश्वरीय प्लान था, गॉडली प्लान है। ब्रह्मा बाबा को भी अपने जीवन में बेशक भक्ति थी, परमात्म प्यार का नेचुरल स्वाभाविक रीति से संस्कार था, विश्व कल्याण की भावना थी, परंतु जिस समय ये स्थापना का समय था, ब्रह्मा बाबा को उस समय क्या ये कर्तव्य, इसका रिजल्ट क्या है, उनको भी समझने में टाइम लगा। कोई प्लान बना करके नहीं किया है, परंतु ईश्वरीय प्लान अनुसार इस बेहद के नाटक में सीन खुलता गया, क्योंकि कोई भी चीज की डेवलपमेंट वो नेचुरल डेवलपमेंट में नेचुरल पावर होती है, और उसमें अगर आधार डिविनिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, और स्पिरिचुअलिटी रियलिटी में है।
दीदी एक मिनट, मैं अभी रुकूं एक मिनट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी? या ओके, हिंदी ठीक है ना? ओके, जो साउथ इंडिया से आए हैं उनके लिए भी ठीक है? ठीक है, सिंपल हिंदी है, समझ में आता है। ठीक है, ओके दीदी। हाँ,
तो स्पिरिचुअलिटी जब रियलिटी है तो उसमें अंतर है भक्ति और आध्यात्मिकता। भक्ति में भावना होती है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, परंतु क्वेश्चन पूछते हुए भी कभी उत्तर संतोषजनक नहीं मिलता। भय होता है कि कहीं गुरु जी नाराज ना हो जाए, कहीं ईश्वर नाराज ना हो जाए, अगर हम उनकी बातों के लिए क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं तो, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, अपने अनुभव के आधार से कहती हूं। मैं 7 साल की थी, मुझे मंदिर में जाने का बहुत शौक था, कथा सुनने का, और 3 साल से की उम्र में ही भक्ति का अट्रैक्शन था। स्पेशली आरती जो होती थी रात को, तो लगता था ये लाइट्स डांस कर रही हैं, ये कहाँ डांस हो रही है, कैसे ये डांस करती है, मालूम नहीं था कि आरती घुमा रहे। अट्रैक्शन बहुत था, पर मंदिर में जाना शुरू किया तो 7-8 आरतियां याद हो गई। 4 साल के बच्चे को तो ईजी है,
तो वैसे भी ब्रिलियंट थे तो,
तो फिर कथाएं भी सुनने का चांस था। तो एक दिन मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, एक गणेश जी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा, और चूहे की सवारी, लड्डुओं का भोग लगे, चूहे की सवारी, तो चूहा लड्डू खाने के लिए आता होगा क्योंकि लड्डू है, परंतु गणेश जी उस पर बैठेंगे तो बेचारा चूहा तो फिस जाएगा, मर जाएगा। पंडित जी को अच्छा नहीं लगा कि ये छोटी सी लड़की क्वेश्चन करती है, डिस्टर्ब करती है, खबरदार अगर भगवान की बातों पर विश्वास नहीं किया तो। उस त्रिशंकु ने प्रश्न पूछा था, उसको लटका दिया आकाश में, अभी तक वो आकाश में लटका हुआ है, आकाश में लटक जाएंगे। भय उत्पन्न, प्रश्न तो नहीं पूछा, नहीं जवाब दिया, परंतु क्वेश्चन तो रहा ही मन में, जवाब नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं।
आपको अभी उत्तर मिल गया है ना उसका?
अब उत्तर मिला बाद में।
कब मिला, कैसे मिला?
ये तो जब मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आई, तो सबसे पहली बात खुशी की मुझे ये थी कि यूनिवर्सिटी है, ये स्कूल है, और एजुकेशन में ना अंधश्रद्धा चाहिए ना भय चाहिए। अगर डर है टीचर का तो मैं चाहते हुए भी राइट आंसर सुनते हुए भी हिम्मत नहीं होती है कि मैं स्वीकार करूं, और अंधश्रद्धा है तो पढ़ाई नहीं होगी। तो ये तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और स्टडी हमको करनी है, टीचर को हमारे लिए नहीं पढ़ना है, वो सिर्फ हमको बताता है कि क्या है। तो जब ये यहां पर कोर्स किया और थोड़ा ज्ञान की गहराई में गई तो अर्थ समझ में आया कि जितने भी हमारे चित्र हैं देवताओं के, न केवल गणेश जी की बात, विष्णु जी के चार हाथ हैं और कह रहे हैं जय लक्ष्मी नारायण, तो वो लक्ष्मी जी की आरती कर रहे हैं या नारायण जी की कर रहे हैं? जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। और वो ही सत्यनारायण है तो वो कब होंगे? वो ऐसे क्या चार हाथ वाले मनुष्य होते हैं क्या? अगर वो होते होंगे तो उनके बेटा बेटी भी चार हाथ वाले होने चाहिए। रावण के दस सिर हैं, बेचारा सोता कैसे होगा? उनके उनके बेटे बेटी कितने, उनके कितने सिर होंगे? यानी जैसे मनुष्य के आत्मा है उनके बेटे बेटियां मनुष्य जैसी होंगी। पक्षी के बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि ये हाथी का बच्चा है, हाथी के बच्चों को ये नहीं कह सकते वो मछली का बच्चा है। तो जब इंसान के बच्चे इंसान हैं तो ये क्वेश्चंस मेरे मन में उठते थे। पर जब मैंने एक्सक्यूज मी, जब मैंने ज्ञान लिया तो समझ में आ जा कि इसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। यानी ये तो चित्रकार की भाषा है, आर्टिस्ट की भाषा है, जो लिखा हुए है शास्त्रों में वो उस समय का उनका अनुभव है और उन्होंने अनुभव को लिपिबद्ध किया है, यानी कविता के रूप में, श्लोक के रूप में, एंटरटेनिंग कहानी के रूप में, जैसे बच्चों को समझाते हैं पैसे की कहानी, पैसे की जबानी। फिर समझ में आ गया,
चीज के पीछे आध्यात्मिक रहस्य है। जीवन में कुछ न कुछ सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया।
रहस्य समझ में जब आ गया ना कि एक्चुअली देखा जाए तो क्या वो गणेश जी कौन थे, वो जन्म कैसे लिया होगा उन्होंने? शिव जी को पता भी नहीं है।
हाँ, बाबा ने आकर के ये सब रहस्य बताया है ना दीदी, देवी देवताओं का। लेकिन मेन जो हमारा कोर लक्ष्य है संस्था का,
सर वो लक्ष्य क्या है? नहीं, वो तो महत्व बताया। लक्ष्य ये है कि हमको ऐसा बनना है। जब हम अपने आप को परमपिता परमात्मा की संतान कहते हैं तो परमात्मा के बच्चों के अंदर कौन सी शक्ति होगी? जब हम सर्वशक्तिमान की संतान हैं, तो हमारे अंदर सेल्फ एम्पावर का किसा क्या मतलब है? आत्मा के अंदर वही पावर होगी जो ईश्वरीय पावर है, अथवा जो परमात्मा की शक्ति है वह आत्मा की शक्ति। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने से जब पहली बात पता चली कि आत्मा है क्या, आई कहां से है, ये पॉपुलेशन क्यों बढ़ती जा रही है, और अगर बढ़ती जा रही है तो एक जैसी क्यों नहीं है उनकी क्वालिटी? ट्विन्स पैदा होते हैं, मदर की डाई तो एक ही है, फीचर्स एक जैसे हो गए, फिर भी पर्सनैलिटी अलग अलग है, कैरेक्टर अलग है। तो ये आत्मा का ज्ञान मिलने से और परमपिता परमात्मा का ज्ञान मिलने से और हमारा एक्चुअल ओरिजिनल आत्मा की विशेषताएं क्या हैं उसको डेवलप कैसे करना चाहिए, ये एजुकेशन, इस एजुकेशन ने बुद्धि का नेत्र खोला और मेरे को, क्योंकि जो मुझे अच्छा लगता है नेचुरली स्वाभाविक है, अच्छा लगता है तो दूसरों को भी इच्छा होती है मन को सुनाए। समाज सेवा का शौक तो मेरे को था ही
जी।
तो यानी क्वेश्चन जी भर के पूछो, डरने की बात नहीं है, पर समझने के लक्ष्य से पूछते हैं।
लेकिन ब्रह्मा बाबा जब इस संस्था की स्थापना की, क्या उनके अंदर, भले आप कह रहे थे कि नेचुरल प्रोसेस रहा ये संस्था की स्थापना, लेकिन इसके पीछे ब्रह्मा कुमारी इसके पीछे कुछ मिशन होगा ना?
तो जिस समय ब्रह्मा
विजन होगा, व्हाट डू वी स्टैंड फॉर।
तो जिस समय ब्रह्मा बाबा को ये रियलाइज हुआ, आत्मिक स्मृति का, आत्मा का ज्ञान मिला, उन्होंने ओम की ध्वनि का उच्चारण करना शुरू किया
जी।
उस ओम के ध्वनि में जो वाइब्रेशंस थे, उस वाइब्रेशन से एटमॉस्फेयर जो भी उन सत्संग में आते थे उनको बिल्कुल अपने देह की भान की फीलिंग नहीं रहती थी। वो ऐसा ही समझते थे जैसे कि हम इस शरीर में रहते हुए कुछ अलौकिक शक्ति है। और छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होते थे, बड़े बड़े बच्चों को भी साक्षात्कार होते थे।
जैसे ये परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई थी,
तो पहले जब शुरू हुआ जिसको, तो उस समय ब्रह्मा बाबा का लक्ष्य अपने जीवन में जो अनुभव हुआ है वो कोई शब्दों में नहीं बताया था। ये तो ब्रह्मा बाबा से साक्षात्कार होता था उनके स्वरूप का, उनकी दिव्यता का। और जब उनके पास ये क्लियर हुआ कि ये परमपिता परमात्मा का कर्तव्य चल रहा है, ये रियलाइजेशन जब उनको हुई और हम सब आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं, तो एक बात जो बिल्कुल यूनिक थी, बाबा ने कहा कि 50% ऑफ द एनर्जी ऑफ दिस वर्ल्ड इज नॉट बीइंग यूज्ड। All the fields or whether political, religious or whatever, women are not given the chance and opportunity. They are like in a prison. They should be given the chance or make them aware of what their specialities are. तो बाबा ने एक बोर्डिंग खोला और actually ब्रह्मा बाबा बहुत बड़े जौहरी थे, जूलर थे, उनके पास एक नेचुरल गिफ्ट थी डायमंड्स को परखने की, परंतु दिव्यता का ये थी कि जो सोल्स डायमंड है उनकी विशेषताओं को वो परख लेते थे और उनकी विशेषता अनुसार उनको विशेष कोई ना कोई सेवा का चांस देते थे। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना बिजनेस समेट लिया, कहा कि ये तो पत्थरों का व्यापार है, मुझे तो सच्चा हीरो का व्यापार करने का है। और जो उन्होंने शब्द लिखे वो बड़े यूनिक थे, अपने घर में जब उन्होंने बिजनेस को समेटा, एक्चुअली एक घटना थी, उनके अंकल की तबीयत सीरियस थी तो घर से टेलीग्राम आया कि अंकल की तबीयत बहुत खराब है। वो तो उन्होंने ये टेलीग्राम में शब्द भेजे, अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अल्लाह को रियलाइज कर रही, मीन्स पार्टनर ए और पार्टनर बी, अल्लाह पार्टनर ए को अल्लाह मिला। उनको कुछ सीरीज ऑफ साक्षात्कार होते थे, लाइट का साक्षात्कार, विष्णु चतुर्भुजी का साक्षात्कार, उसमें उनको ये अनुभव हुआ, शब्द ये सुनाई पड़े, अहम चतुर्भुज तत्वम, तुम्हारा ये स्वरूप है, पहले समझ में नहीं आया, धीरे धीरे जिस समय ये समझ आया कि परमात्मा और उनसे ब्रह्मा से लोगों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, तो लोग समझते ये श्री कृष्ण है। पर जब ये स्पष्ट हुआ कि शिव परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, और वो जो शब्द उन्होंने सुने, वास्तव में उन्होंने नहीं, उनकी डॉटर इन लॉ ने सुने थे, अनुभव किया था
दीदी, ये जो भी साक्षात्कार हुआ, लेकिन वो कनेक्शन है अभी, वो ऐसे आप कह रहे थे कि ऐसे बनना है, देवी देवताओं जैसे बनना है, लेकिन अभी वर्तमान समय तो वो कैसे हम कनेक्ट करें, लाइफ में रहते हुए हम देवी देवता कैसे बन सकते हैं, हम पूछते हैं देवी देवताओं को।
अभी क्या है कि जब उनको ये साक्षात्कार हुआ लाइट का, उस लाइट में से उस शब्द जो उन्होंने सुने, अनुभव किए, सत्य स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और दूसरी तरफ वो लाइट उनको दिखाई पड़ रही है, और ऐसा लगा जैसे आकाश से सितारे नीचे उतरते हैं और वो प्रिंस और प्रिंसेस बन जाते हैं, और ये सृष्टि एक पैराडाइज बन रही है। वो साक्षात्कार उनके पास जैसे कि एक एम मिल गया, तो उन्होंने ये कहा कि पर मैं कैसे ये कार्य कर सकता हूं, पर ये कौन था जिसने मुझे कहा? इट वॉज ए लाइट, इट वॉज अ माइट। वो लाइट और माइट फिर बाद में रिवील हुआ कि वो इनकॉर्पोरियल शिव के महावाक्य थे। तो उस लक्ष्य में, यानी उनको एक लक्ष्य मिला अपने जीवन का कि इस सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, और उसमें तुमको निमित्त बनने का है। ये बीज जैसे था, परंतु अकेला यह कार्य कैसे होगा? तो उन्होंने वो जो ट्रस्ट समय बनाया, उसमें 8 माताओं को ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया, संपत्ति समूह ट्रस्ट को समय भी, और एक बोर्डिंग स्कूल बनाया जिसमें छोटे बच्चों को बचपन से ही, क्योंकि परिवार के परिवार आने लगे, माताओं के अंदर एक शक्ति भर गई कि हमको अपने जीवन को इतना दिव्य बनाना है। ये बाबा ने स्मृति दिलाई माताओं को कि आप जिस रूप में अपने आप को देख रही हो, ये तो आप नहीं हो, ये तो शरीर धारण किया हुआ है आपने, आत्मा पुरुष है या स्त्री? आत्मा तो आत्मा है, और आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान है। मुझे एक निर्मल अपनी शील इंदिरा दादी की कहानी याद आती है, उन्होंने कहा कि हम अमृत वेले योग करने जाते थे, तो एक दिन पेरेंट्स ने कोई को साथ में नहीं भेजा, इसने कहा कि मेरे को तो जाना है जरूर, तो कहा कि मैं ऐसे ही जा रही थी, पहले तो कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, थोड़ा सा डर लगा, पर मैंने फौरन सोचा मैं कौन हूं, गॉड का बच्चा गॉड, डॉग का बच्चा डॉग, गॉड का बच्चा गॉड, डॉग का बच्चा डॉग, कहा मैं गॉड की संतान हूं, ये तो इसकी लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज तो पावर है। और दूसरे दिन ऐसा कि अहम चतुर्भुज, मैं खाली पुरुष नहीं, कुमारी नहीं, नर और नारी मैं दोनों हूं, मेरे में दोनों शक्तियां हैं। तो बाबा ने ये माताओं के अंदर शक्ति भरी,
और उस समय जहां बहनों को नारियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, और इतना फ्रीडम नहीं था.
एक्चुअली फियर नहीं था, हिम्मत आ गई, क्योंकि सिंध में तो विशेष करके वो
घूंघट वाले
पर्दा बहुत था.
1960s की बात है ना, घूंघट में होते थे.
मुस्लिम कंट्री थी तो हिम्मत आई उनके अंदर. और बाबा ने उनकी ड्रेस भी ऐसा नहीं कि वो जैसे बच्चे हैं बिल्कुल, ड्रिल कराने ले जाना, एक्सरसाइज कराना और ऐसा ड्यूटी देना. बसेस चला, बहन बस चलाती थी, बहन कारें चलाती थी उस समय 1937 में. बाबा की बहू बस चलाती थी उस समय, बच्चों को स्कूल में भेजना करने का. अच्छा, वो उस समय एक स्थूल कार्य करने के लिए
वो हिम्मत कहां से, कौन से ज्ञान के आधार से मिला?
ज्ञान के आधार से
कौन से पॉइंट है?
अच्छा,
ज्ञान के जिस आधार से बाबा ने हर नारी को या हर भाई बहन को वो हिम्मत दिलाया.
क्योंकि ये याद कराया, तुम्हारी एनर्जी कॉस्ट्यूम में लिमिट नहीं है, ये एक कंटेनर है. इस कंटेनर में आप जो भरा, समाज के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, फियर के हिसाब से, सोसाइटी को संतुष्ट करने के हिसाब से, आप अपने लक्ष्य को देखो कि आप कौन हो. संतुष्ट दूसरों को करने में फियर से और फोर्स से कभी किसको कार्य नहीं होता है. तो स्मृति दिलाई कि आप शिव शक्तियां हो,
आत्माएं हो,
और आत्मा हो, आत्मा हो, और आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है. परंतु बाबा ने एक बात बहुत ध्यान पर दिलाई कि यह आत्मिक भाव में कहां भी रिवंज लेना, कोई किसी प्रकार का रेवोल्यूशन करना,
रेवोल्यूशन
ये विशेषता नहीं है. रिस्पेक्ट सबको देनी है. तो बाबा ने खुद जो अभ्यास किया था, ये भी आत्मा है, यशोदा आत्मा है, अपनी वाइफ को ये प्रैक्टिस किया था, ये आत्मा है, बेटा नारायण आत्मा है, बेटी पालू आत्मा है. ये बाबा ने स्मृति दिलाई कि जब भी आप किसी को देखो, आपके घर में कोई भी है, हस्बैंड है, बच्चा है, मदर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, उनको आप उस देह के संबंध से देखते हैं तो पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं. आप आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो जो आत्मा के संस्कार हैं, जो आत्मिक शक्ति है, वो कम्युनिकेट करेगी. तो सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस कराने की
ये फाउंडेशन रहा है,
फाउंडेशन. और उसके लिए मौन व्रत रखते थे. शब्दों की बात नहीं थी. जो प्रोग्राम होता था वो भी साइलेंस में होता था. बोर्ड पर प्रोग्राम लिखा हुआ है और 15-15 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें समझे एक प्रकार की योग की भट्टी होती थी, जिसमें वो 15 दिन या 8 दिन साइलेंस में ही रहना है. सिर्फ जो भी बाहर की एक्टिविटी है, अपने रूम से बाहर जाना है, परंतु यही आत्मिक दृष्टि में एक दो को देखना है. तो ये अभ्यास जो फाउंडेशन थी वो स्पिरिचुअलिटी इन रियलिटी था, और वो रियलिटी फिर डिविनिटी बन गई. क्योंकि आपस में एक दो को उस शरीर के नाम से नहीं था, वंडर फ्री दूसरा ये भी था कि ये ब्रह्मा बाबा को भी, जो कई भाई बहनों को, कुमार छोटे बच्चों को भी एक ईश्वरीय गिफ्ट थी, वो ट्रांस में जाते थे और वो प्रोग्राम लेके आते थे. उनमें से कईयों ने देखा कि इस वतन के पार एक और वतन है जिसको सटल रीजन कहा जाता है, जिसको व्यक्तियों वाला नहीं है, वो पांच तत्वों से परे का स्थान है. और उस स्थान पर जो एनर्जी है वो लाइट है, तो हम लाइट की बॉडी हैं। और फिर भविष्य के भी साक्षात्कार होते थे कि ये जो सतयुगी दुनिया जब होगी, जब डिविनिटी लाइफ में आ जाएगी, तो उसके साक्षात्कार होते थे कि भविष्य में दुनिया कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा, विचार और व्यवहार कैसा होगा।
दीदी, जो भी स्वर्ग की बात कर रहे हैं वो तो भविष्य में होगा, जो भी होगा, लेकिन अभी इस जीवन में इस ज्ञान को हम कैसे यूज करते हुए, रिलेवेंट क्या है ब्रह्म कुमारीज और मेडिटेशन अभी अपने लाइफ में कैसे उसको?
वो जो स्पिरिचुअलिटी डिविनिटी बन गया, और डिविनिटी फोर्स की नई चीज है, वो सोल के संस्कारों में व्यवहार में आने की शक्ति, तो जीवन बना उनका। सिर्फ भक्ति पूजा की बात नहीं है, जीवन ही ऐसा बना जो कर्म करते हुए 350 लोग हैं, भाई बहन हैं, उनका खाना भी बनना है, घर की सफाई भी होनी है, सबके वस्त्र भी धुलाई होने हैं, सब ऑटोमेटिकली, इतने डिपार्टमेंट्स हैं तो हर कार्य करना होगा। तो सब कार्य करते हुए आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के जो कर्तव्य किया, तो उसमें हार्मनी थी, विशेष
वो फाउंडेशन बना 14 ईयर
तक। तो वो स्पिरिचुअलिटी, जिसको मैं कहती हूँ रियलिटी थी, और हर एक ने अपने आप का अपने आप अनुभव किया। भक्ति में हम साक्षात अनुभव करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु अगर किसी आपको अपना दर्पण देखना हो, अपना फेस देखना हो, तो आपको क्या चाहिए? मिरर चाहिए। अगर मिरर एक ब्लाइंड को दे देवे, तो क्या वो मिरर अपनी आंख देख सकते है, अपना चेहरा देख सकते है? तो भक्ति में हमने दूसरे की आंख ने जो देखा उस पर विश्वास कर रहे हैं, और यहां ये था आत्मदर्शन स्वयं का, परमात्मा दर्शन, आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ। तो जब मेरी आंखें मेरे फेस का अंग है, और मेरी आंख से ही मैं अपना फेस देख सकती हूं, तो बाबा ने हर एक आत्मा को ये स्मृति दिलाई कि आप अपना दिव्य नेत्र से दूसरों को देखो, और दिव्य नेत्र से स्वयं को देखो। तो उसमें जो डिवाइन वर्चुस थे, जो वैल्यू थी, वो नेचुरल एक्सचेंज होती थी। इसलिए एक संगठन बड़ा पावरफुल बना, न केवल बड़ों का, परंतु छोटे बच्चों में बहुत बड़ी अच्छी फाउंडेशन रही। स्वच्छता उनको सिखाई, नेचुरल बड़ा लवफुल वे से डिसिप्लिन कैसे रखना है वो सिखाया, 13 साल की 12 साल की लड़कियों को, कुमारियों को, छोटे छोटे बच्चों की संभाल के लिए निमित रखा, और माताओं को फिर दूसरी भाइयों वाली ड्यूटी दी, जो ब्रदर्स करते हैं जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई तो थे ही, क्योंकि परिवार आए तो कुछ ब्रदर्स भी थे, कुमार भी थे, छोटे बच्चे भी थे, बड़े भी थे, परंतु बाबा की फाउंडेशन थी हर एक का कल्याण हो, हर एक आत्मा के अंदर अपनी आध्यात्मिक शक्ति की जागृति हो, और उसका आधार है
कनेक्शन
परमात्मा से। तो ये बाबा बार बार स्मृति दिलाते थे कि आपको इन पर फोकस नहीं करना है, ब्रह्मा पर फोकस नहीं करना। वो तो परमात्मा शिव ने इनका नाम दिया ब्रह्मा, प्रजा का पिता, परम आत्माओं का कल्याण करने के एक निमित्त इंस्ट्रूमेंट। तो बाबा ने गुरु तो बहुत किए थे, उनको जब ये निश्चय हुआ कि परमात्मा ही सदगुरु है, तो उन्होंने फॉलोअर्स नहीं किसी को बनाया, कभी भी बाबा को कोई
इसलिए संस्था में कोई फॉलोअर्स नहीं है, गुरु और फॉलोअर्स की परंपरा नहीं है यहाँ।
तो बाबा ने लीडर्स तैयार किए,
लीडर्स
फॉलोअर्स तैयार नहीं किए। एक एक कुमार एक एक कुमारी को उनके अंदर वो जागृत किया, शक्ति को यूथ के अंदर उत्साह भरा, कुमारियों के अंदर आत्मिक बल भरा, माताओं के अंदर निर्भयता की शक्ति भरी, जिसमें डर खत्म हो जाए। और कोई भी बात है तो समझ से सामना करना है, डर से नहीं, विरोध से नहीं, क्रोध से नहीं, अंधकार को खत्म करने के लिए। अंधकार से युद्ध नहीं किया जाता, लाइट नेवर फाइट्स, लाइट स्विच ऑन, डार्कनेस इज गॉन। सो ये रियलाइजेशन थी कि जब आप आत्मिक शक्ति को अपने अंदर भरेंगे तो नेगेटिविटी को फिर चांस नहीं है, परंतु वो ऑन होनी चाहिए, वो कनेक्ट होना चाहिए, जिसका नाम है राजयोग। आत्मा का पिता परमात्मा के साथ संबंध, और उनकी जो श्रेष्ठ मत है वो पहली बात यही है कि आप अपनी आत्मिक शक्ति को रियलाइज करें। ऑफ कोर्स स्किल्स, स्पेशलिटीज, डिग्रीज, एजुकेशन से डेवलपमेंट होती है, परंतु आधार, इसका आधार आत्मा का मन, बुद्धि और संस्कार है। आप आत्मा समझेंगे तो मन में क्लैरिटी, प्योरिटी, पॉजिटिविटी और पावर आएगी। आत्मिक भाव में न केवल मन शुद्ध होता है, जब परमात्मा के साथ संबंध जुड़ता है तो बुद्धि में क्लैरिटी आती है, प्योरिटी भरती जाती है, विजन बड़ा क्लियर है, डिसीजन पावर एक कॉन्फिडेंस और करेज से आती है, और संस्कारों में, पर्सनैलिटी में करेज है, कॉन्फिडेंस है। तो जब ये शक्तियां भर गई बहनों में, भाइयों में, तो बाबा ने उनको भारत में आने के बाद अलग अलग स्थानों, दो दो कुमारियों को बिल्कुल नए स्थान पर भेजा, जहां कोई कांटेक्ट तो है, कोई रिश्तेदार है, कोई फ्रेंड्स है, मालूम है, ताकि बेटियां जिनकी जा रही है उनको मालूम है कि कहां पर हैं, वो रहते हैं, क्या है। परंतु डेवलपमेंट जो करनी थी वो किसी पर निर्भर होकर के नहीं, आध्यात्मिक बल से, और उसका आधार था मन, वचन, कर्म, वृत्ति, व्यवहार, विचार में दिव्यता और पवित्रता। वो जो पवित्रता के वाइब्रेशंस, उसमें उनको त्याग नहीं लगा, ऐसा नहीं था कि उनको कुछ छोड़ना पड़ा है, परंतु जो शक्ति अंदर मिल रही थी तो ऑटोमेटिकली जो फियर, टेंशन, इनसिक्योरिटी, डर, जो बातें थी, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, कुछ रॉन्ग तो कर नहीं रहे ना, अपना भी उन्नति हो रही है, दूसरों का भी कल्याण कर रहे हैं, और स्वार्थ कुछ नहीं, तो फाउंडेशन था सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ सेवा। ब्रह्मा बाबा का लक्ष्य था निष्पक्ष हर चीज में, जहां पक्षपात होता है वहां पर कभी भी सत्य अथवा डिसीजन राइट नहीं होता है। तो बाबा डिटैच होने के कारण परिवार में किसी को भी कोई ऐसा नहीं कि अपने स्थान पर किसी को ड्यूटी मतलब अथॉरिटी दी हो या उसको लीडर बनाया हो.
ट्रांसफर ऑफ गद्दी ट्रांसफर नहीं किया,
यानी ट्रस्टी थे अपनी रीति से, बिल्कुल ट्रस्टी होके रहे, जिसमें बेटी या बेटे को कोई विशेष दिया हो सेवा नहीं. निर्मल शांता दादी बताती हैं,
निर्मल शांता दादी इज अ लौकिक डॉटर ऑफ ब्रह्मा बाबा,
बाबा की डॉटर. वो भी वो तो लखपति के घर में उनका उतना ही जितना बाबा का स्टैंडर्ड था, उससे भी बड़ा उनका ससुराल का स्टैंडर्ड था. तो उनको ड्यूटी मिली बर्तन साफ करने की. तो कहते हैं कि मैं एक पतीले बड़े बड़े होते थे, 300 का खाना बनता है, तो बहुत करके तो मैनेज किया. एक दिन पतीला जो मतलब पॉट था वो थोड़ा कुछ जल गया होगा, कुछ मिठाई बनाई थी क्या बनाई थी, तो वो चीनी काल उतरती नहीं थी. मैं चाहूं अंदर हाथ नहीं पहुंचता था, तो कहा मैं कूद गई अंदर, साफ तो करना है मुझे, बिल्कुल क्लीन करना है. तो कहती है मैं कूद गई उसके अंदर, मैंने साफ करना अच्छी तरह,
क्योंकि बड़े बड़े पतीले 400 लोगों का भोजन जो बन रहा था, तो हाथ तो नहीं पहुंचता है ना, खुदना पड़ता है.
तो कहा कि जब मैं लेटा तो फिर तो अंदर गई तो फिर खड़ा हो गया पतीला. तो जैसे जैसे मैं साफ कर रही थी बैठी बैठी, तो बाबा और जिनको बाबा ने हेड बनाया था सरस्वती माँ, वो टूर कर रहे थे, ऐसे चक्कर लगा रहे थे. तो कहा कि ये बर्तन अपने आप कैसे मूव कर रहे हैं. बर्तन मूव कर रहे क्या हुआ सर? नजदीक आके देखा तो अंदर निर्मल शांता था. कहा बच्चे क्या कर रही हो? तो बताया बाबा साफ नहीं होता था. कहा वंडर तो ये था, बड़े हमने मजे से किया. दूसरी स्टोरी
और ब्रह्मा बाबा जो उस समय नौ कोटि नारायण कहलाते थे, इतना था धन था बाबा के पास, सब कुछ एक ये संस्था के लिए उन्हें समर्पित किया, और उनके बच्ची जो भी बहू है तो वो भी समर्पित हुए, तो सब कुछ काम किया उन्होंने.
दूसरा डिपार्टमेंट मिला. कहा एक बेल चप्पल टूट गई, तो मैंने कहा बाबा कोई बाहर जाएगा ना तो चप्पल चाहिए होगी. कहा चप्पल टूट गई है? कहा मोची को भेजेंगे ना लेने के लिए. बाबा ने कहा निर्मल शांत दादी को, मोची जितना भी अक्कल नहीं है, तो चप्पल तो सी जा सकती है ना. कहा मैंने, मुझे तो चैलेंज लगा. कहती है मैंने चप्पल को ठीक कर लिया, तो फिर तो मैं फेमस हो गई चप्पल ठीक करने. तो ये था जैसे कि मतलब जॉयफुल, हर एक्टिविटी हर ड्यूटी जॉयफुल होती थी. तो एनाउंसिएशन नहीं लगता था, पर फन लगता था, मनोरंजन लगता था, इसीलिए इजी था सब कुछ. तो ये बाबा ने जो भी सिखाया वो भावना भी कल्याण की हो, कामना शुभ भावना शुभ कामना से कर्तव्य करते हैं, थकावट नहीं होती है, हर एक के प्रति शुभ भावना से करते हैं तो दुआएं मिलती हैं. तो बाबा मामा के जीवन का जो त्याग था, उस त्याग ने हर चीज को बहुत सहज, और उसमें प्यार की शक्ति थी, यानी मेन बात थी
परमात्मा प्यार की शक्ति,
अलमाइटी का प्यार जो था, परमात्म प्यार जो था, वो हर चीज से एकदम रिनंसिएशन नहीं, त्याग त्याग नहीं है, ये भाग्य है, ये सुंदर सौभाग्य है जिसमें हम अपना भी कल्याण करते हैं और समाज की सेवा भी करते हैं.
तो मुख्यतः इस संस्था का जो नारा रहा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो बाबा पहले अपना परिवर्तन करके दिखाया, और अपना सब कुछ वो करके दिखाया बच्चों को फॉलो करने के लिए। तो उस हिसाब से फिर प्रेरित हुए, बाबा को देखा प्रैक्टिकली वो करते हुए, तो फिर करना इजी रहा है।
बराबर,
हाँ,
एग्जाम्पल से,
एग्जाम्पल रहा,
एग्जाम्पल से, शिक्षा शब्दों में नहीं परंतु प्रैक्टिकल रूप में देख करके।
आप ब्रह्म बाबा से मिले? आप ब्रह्म बाबा से मिले हैं?
हाँ, मैं 12 साल, एक्चुअली ये भी मेरा सौभाग्य है, मेरा स्पिरिचुअल बर्थ ब्रह्मा बाबा से हुआ,
दिल्ली में।
वो दिल्ली में आए थे और मैंने उस समय तो पता नहीं था कि हम तो गुरु जी समझ के गए थे, कोई महात्मा जी समझ के गए थे। कॉलेज से मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया था और मेरी आंटी भी थोड़ा ज्ञान में थी, तो पहले उन्होंने कहा कि आपके काम का यह सत्संग आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि यह ऑर्डिनरी कथा नहीं है। पर मेरा इंटरेस्ट था, मेरी फ्रेंड ने रेकमेंड किया, एनीवे मुझे अलाउ किया। छत पर क्लास हुआ था, शाम का समय था, 57 सितंबर की बात है, तो मैं तो जाके बैठ गई। ये सब लोग आंखें खुली है बैठे हुए हैं, कोई कथा नहीं हो रही, कोई कीर्तन नहीं हो रहा है, कोई ढोलकी नहीं बज रही है, कोई आवाज नहीं है, क्या कर रहे हैं ये लोग? नया सीन लगता। तो मैं आंखें बंद करके बैठ गई। मैंने कहा चलो अच्छा, मैं तो भगवान को याद करूं, ऐसा करके बैठ गई। किस समय बाबा आए मुझे मालूम नहीं, क्योंकि कथा में जाते थे तो पंडित जी आते थे, गुरु जी महाराज जय आवाज होता था, ये तो बाबा चुपचाप आके बैठ गए। तो मैंने जब सामने देखा तो मुझे वो बाबा की बॉडी का ऑरा, जिसको अभी ऑरा समझते, उस समय तो ऑरा नहीं था, मुझे जैसे कि लाइट की परछाई है, लाइट का बॉडी है। तो लॉजिक मेरे को हर चीज में, मैंने कही सन, अगर सूर्य का रिफ्लेक्शन है तो इन महात्मा जी पर क्यों है, बाकियों पर क्यों नहीं है। मैंने जगह बदली किया, वहां से उठ के दूसरी जगह बैठी, फिर भी वो बॉडी लाइट की दिखाई पड़ रही है। फिर पिंच किया अपने आप को कि मैं जाग रही हूं या सो रही हूं, उठ के आई हूं, कॉन्शियस हूं, पर वो जो लाइट का एक्सपीरियंस था वो बड़ा यूनिक था। मैं जब सामने देखती हूं तो वो लाइट जैसे मैग्नेटिक एनर्जी है, मुझे खींच रही है। और मैं बंद करती हूं क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था। तो वो लाइट का ऑरा जो एक चंद्रमा की शीतलता वाला रूप मेरे आसपास है, तो एक सेकंड में वो एनर्जी आनंद देती थी, दूसरे सेकंड में वो शीतलता का अनुभव कराती थी। तो जैसे गर्मी का मौसम होता है तो पसीना आता है, तो बाहर का कुछ नहीं था, कोई गर्मी नहीं थी, पसीना नहीं था, पर जैसे पसीने में अगर ठंडा हवा का झोंका होता है तो सारी बॉडी में सिरन होती है। बाहर का कुछ नहीं था पर अंदर से इतना आनंद, इतनी खुशी। मैं जैसे छोटे बच्चे खेल खेलते हैं ना, मैं आंखें बंद करती थी, 2 मिनट आंखें बंद करके फिर खोलती थी, बंद करती थी, खोलती थी। अभी पता नहीं मेरे मन में आया, सुना हुआ था ब्रह्मा कुमारी जादू करती है, अरे ये ब्रह्मा कुमारी है, अच्छा ये तो कुछ जादू कर रहे हैं। जैसे ही मुझे ये संकल्प आया वो एक्सपीरियंस गुम हो गया।
ओके।
और मेरे को आया कि मेरी मदर कहाँ बैठी है, मेरी मदर को जाने दिया था उन्होंने। मैं थोड़ा निश्चिंत हो गई कि मेरी अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मदर बैठी है। तो ये बॉडी का कॉन्शियसनेस और फियर जो आया अंदर, वो एनर्जी लेवल चेंज हो गया। तो क्यूरियोसिटी मेरे में हुई कि वो महात्मा जी में लाइट कहां से आई थी, इसने मुझे लाया। मुझे समाज सेवा का शौक तो था, फिर जब स्टडी करना शुरू किया, बाद में मतलब पढ़ा, तो फिर सारी बातें क्लियर हुई. पर मैं आई इसलिए कि ये लाइट कहाँ से आई थी इनमें. फिर धीरे धीरे पता चला कि एक्चुअली, क्योंकि मैंने, मेरी फ्रेंड ने बताया कि आपको मालूम है, आपको मे बी स्पेशली आप इस वाइब्रेशंस को कैच किया है, वो ऑलमाइटी की लाइट उनमें आती है. मैंने कहा नहीं, भगवान तो कोई नहीं, ऑलमाइटी आए तो किसकी बॉडी जल जाए, ये शरीर जो है वो राख हो जाएगा. जो मेरे पास कॉन्सेप्ट भक्ति का था, और भगवान ने बोला होता तो आकाशवाणी होती, वेदर बड़ा अच्छा था, वही लॉजिक. तो उसने कहा
तूफान होना चाहिए, गरजना चाहिए, तब जाकर के आकाशवाणी होगी. दीदी, उस समय जो आप आए और अभी जो आपकी जीवन यात्रा रही है इतने लंबे काल, आप कह रहे हैं कि 57 में आए थे, 57 में आए थे ना, तब से लेकर के अब तक मोर देन 70 years नाउ, लाइक, तो क्या आपके लाइफ में वो अंतर रहा है?
मैंने देखा बाबा ने हर समय उत्साह बढ़ाया. हम लोगों को एग्जीबिशन होती थी तो उस समय, पहले तो शुरू का 57 में तो जगह जगह सत्संग होते थे, ग्रुप सुनने क्लासेस चलती थी, तो जाकर के थोड़ा क्लास किया, क्लास कराया, स्टडी किया, क्वेश्चंस पूछे, आंसर मिले. रोज की जो मॉर्निंग मेडिटेशन है उसमें डिसिप्लिन रखा, पक्की फाउंडेशन पक्की. फिर हमारे पेरेंट्स भी चलने लगे, 25 मेंबर्स ऑफ द फैमिली आ गए, तो एक अच्छा उमंग उत्साह रहा.
आपके स्पिरिचुअल लाइफ में क्या अंतर रहा है दीदी उसके साथ साथ?
तो क्वेश्चन क्या, जैसे परिवर्तन आया ना, तो हमारे पेरेंट्स को, क्योंकि एक दिन कि हम बाहर की कोई चीज नहीं खाते, घर की बनी हुई चीज खाते हैं, सात्विक वृत्ति में से बनाओ, सात्विक भाव से बनाओ, प्रेम से बनाओ. तो दिवाली का दिन था, मेरे फादर ने कहा मदर से, ये मिठाई क्यों नहीं खा रही? उन्होंने कहा ये ब्रह्मा कुमारी के पास जाती है. तो हमारे फादर ने कहा हम भी जाके देखे, हमारी बेटी जाती है, कोई पूछेगा तो. वो आए तो उनको भी अच्छा लगा. तो जीवन से देख करके प्रेरणा मिलती है. तो उस समय बाबा, बड़ी बहने जो विशेष ध्यान दिलवाती थी, और अब भी वही है कि हमारे जीवन की फाउंडेशन अपने अनुभव से, अपने निश्चय से, अपनी लगन से और अपने निर्णय से होनी चाहिए, ताकि बाद में ये ना हो अरे मैंने रॉन्ग पाथ लिया है. तो जैसे कोई चीज तोल के ली जाती है, अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से अपने स्वरूप को देखा. तो बाबा सब में उत्साह भरते थे. तो पहले तो इंडिविजुअल छोटे छोटे स्थान सेंटर खुलना शुरू हुए, फिर एग्जीबिशंस होना शुरू हुई, मेले लगने शुरू हुए, कॉन्फ्रेंसेस होनी शुरू हुई, म्यूजियम बना. बाबा ने जयपुर में पहला म्यूजियम बना था, जिसमें ये सब चित्रों की एक्सप्लेनेशन है. मेरे को टेलीग्राम भेजा दिल्ली में, आज की डेट में म्यूजियम बनने वाला है, बन रहा है, आप वहां जाओ. तो एक जो अनुभव नहीं है किसी चीज का, तो भी जैसे कि बच्चे को तैरने के लिए पानी में डाल दो, तो बड़े स्थान पर बाबा भेज देते थे.
वो अनुभवी बनाया बाबा ने आपको ना
जी.
उसके बाद आप लंदन गए, लंदन में फिर इतना उस्तार हुआ. दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इतना आप अपना अच्छा अनुभव, ऐसा लगता है कि सुनते रहे आपकी कहानियां, लेकिन क्या करें सभी थके हुए हैं और कल सवेरे अमृत वेले में भी उठना है.
फिर तो विश्व सेवा पर भेजा 74 में. और विजन एक शब्द सुनाती हूँ खाली, दिल्ली दिल्ली वालों ने कहा कि बाबा अभी सुदेश को म्यूजियम तो बन गया, सर्विस भी शुरू हो गई, अभी आप दिल्ली में इसको वापस भेजो। बाबा ने पत्र लिखा, दिल्ली में घोड़े पर बैठी थी, अभी यहाँ जयपुर में हाथी पर बैठी है, हाथी से उतार के घोड़े पर थोड़ी बिठाऊंगा, शेर तैयार करो तो भेजूंगा।
अभी शेर की सवारी कर रहे हो आप, बहुत अच्छा।
तो बाबा का विजन बड़ा ऊंचा होता था,
विदेश में रह करके या स्पिरिचुअल पाथ में रहना, इट्स नॉट, वो शेर पर सवारी से कम नहीं है।
और पता भी नहीं था, ये भी बाबा ने कहा था, 68 नवंबर में मैं मधुबन गई थी, उस समय बाबा ने कहा था ये बच्ची विदेश जाएगी, लाखों को संदेश देगी, बाबा के वारिस तैयार करेगी। विदेश क्या होता है उसमें तो पता भी नहीं था,
पता भी नहीं था, मैथ मैथ में कहाँ आता है, जर्मनी लंदन कहाँ आता है, पता नहीं,
बस बड़ी बड़ी कंट्रीज पता, कॉन्टिनेंट है, परंतु इतनी कंट्रीज है और इतने स्थानों पर जाना होगा, ये तो कभी स्वप्न में भी नहीं था। तो बाबा का विजन अब तो हंस पर बिठा दिया, समझो उड़ते ही।
बहुत अच्छा है दीदी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत आपसे लाभ मिला सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
तो स्वास्थ्य सेवा, परिवार सेवा, समाज सेवा, देश सेवा और विश्व सेवा, ये तो प्रैक्टिकल में भी चल रहे हैं।
बहुत अच्छा,
सेवा ही जीवन है, सेवा में ही दुआएं। ओम शांति।